www.urduvoa.com.
VOA News Bureau. Tens of thousands of people marched through Minsk on Sunday, calling on Belarusian President Alexander Lukashenko to step down in mass demonstrations that showed no signs of weakening, this nearly a month after an election his say was fixed. Unprecedented protests broke out in the ex-Soviet country after Lukashenko, who has ruled the former Soviet state for 26 years, claimed re-election with 80% of the vote on August 9th. Opposition rival Svetlana Tikhanovskaya says she won the vote, but Lukashenko's security forces have detained thousands of protesters, many of whom accused police of beatings and torture. Several people have died in the crackdown, but Belarusians are still demonstrating across the country, with more than 100,000 people flooding the streets of the capital for three straight weekends. Lukashenko, who previously played Moscow against the West, has called on Russia for help, and Russian President Vladimir Putin has accompanied his recent offers of economic and military aid to Belarus with calls for tighter integration between the two countries. Nearly 100 people were arrested by Hong Kong police on Sunday as riot officers swooped on democracy protesters opposed to the postponement of local elections. Sunday was meant to be voting day for the city's partially elected legislature, one of the few instances where Hong Kongers get to cast ballots. But the city's pro-Beijing leader, Carrie Lam, suspended the polls for a year, citing the coronavirus. This angered pro-democracy opposition to capitalize on seething anti-government sentiment. Security officials in Tunisia say a police officer has been killed and another wounded in a knife attack in the coastal resort of Sousse. Three assailants were shot dead after the incident, which is being described as a terrorist attack. This is VOA News. More than 410,000 Americans could die from COVID-19, the disease caused by the coronavirus, by January 1st. This is according to the latest model by the University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluation. It added that increasing mask use to the levels in Singapore would decrease the cumulative death toll. The model's outlook for the world was even more to triple to 2.8 million by January 1st. There are nearly 27 million. Tensions deepened Sunday between Germany and Russia over the alleged poisoning of opposition figure Alexei Navalny, with Germany threatening sanctions and Russia accusing Berlin of delaying the investigation it demanded. Russian opposition leader and anti-corruption campaigner Navalny fell ill on a flight last month and was treated in a Siberian hospital before being evacuated to Berlin. Germany said last week there was unequivocal evidence that President Vladimir Putin's top foe had been poisoned using a Soviet-era nerve agency. These claims were reiterated on Sunday. The Kremlin has denied responsibility for the attack, and foreign ministry spokespeople say Germany is stalling efforts to probe the case, as they have asked German authorities to do. The death toll from a gas explosion that tore through a Bangladesh mosque, has risen to 24, this according to officials on Sunday, as rescuers described how survivors jumped into a nearby open sewer to cool their bodies and escape the flames. Worshippers were at Friday evening prayers when the blast sent a ball of fire through the mosque in a town near the capital, Dhaka, emergency services said. There has been growing anger over the incident after the committee running the mosque alleged the state-run gas transmission firm had earlier demanded a bribe to fix the leak quickly. Investigators suspected a spark from an air conditioner, which came on after a power cut started the blaze. The committee's president told the press that the mosque started experiencing problems with the gas pipes a few days earlier. For more on these and other stories, please visit our website at voanews.com. This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال. پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کی راؤنڈ ٹیبل میں ہوں یاسمین جمیل. آج ہم بات کر رہے ہیں کووڈ 19 کے دوران ابھرتے ہوئے ٹیلی میڈیسن کے شعبے کی, لیکن خصوصی طور پر ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور دنیا بھر میں موجود ان پاکستانی لیڈی ڈاکٹرز کی جو اپنی گھریلو مصروفیات یا شادی کے بعد دوسرے ملکوں میں شفٹ ہونے کے بعد اپنے میڈیکل پروفیشن سے منسلک نہ رہ سکیں, مگر جنہیں ایک عرصے کے بعد ایک موقع ملا ایک بار پھر اپنے شعبے سے منسلک ہو کر انسانیت کی خدمت کا, اور انہیں یہ موقع فراہم کیا پاکستان میں ڈاو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کراچی اور پاکستان کے ایک غیر منافع بخش ادارے ایجوکاسٹ نے, جس کے بعد دنیا بھر کے 27 ملکوں میں موجود یہ لیڈی ڈاکٹرز جو گھر بیٹھ گئی تھیں ایک بار پھر اپنے پروفیشن میں واپس آ گئیں, لیکن اس بار یہ سرٹیفائیڈ ای ڈاکٹرز کے طور پر سامنے آئیں, اور خاص طور پر کووڈ 19 کے دوران ان ڈاکٹرز نے پاکستان کے ہزاروں مریضوں کو رضاکارانہ طور پر آن لائن ہیلتھ سروسز یا ہیلتھ کاؤنسلنگ کی فراہمی میں مدد کی. تو یہ سب کیسے ممکن ہوا, اس بارے میں آج کی راؤنڈ ٹیبل میں گفتگو ہو رہی ہے, جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت سندھ کے کووڈ 19 مانیٹرنگ سیل کی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر مہوش گلبانی, ایجوکاسٹ کے فاؤنڈر اور سی ای او عبداللہ بٹ, اور اس پروجیکٹ سے وابستہ کچھ ای لیڈی ڈاکٹرز جن میں شامل ہیں کینیڈا سے ڈاکٹر علینا علی, سعودی عرب سے ڈاکٹر میشا علی, شارجہ سے ڈاکٹر سبیکا, اور کراچی سے ڈاکٹر ادیہ احمد. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایجوکاسٹ کے فاؤنڈر اور سی ای او عبداللہ بٹ سے. السلام علیکم عبداللہ بٹ صاحب.
السلام علیکم, بہت بہت شکریہ یاسمین صاحبہ.
آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ یہ جو ایجوکاسٹ ہے وہ ہے کیا, اور کیسے اس نے پاکستان کی دنیا بھر میں موجود جو خواتین لیڈی ڈاکٹرز ہیں جو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئی تھیں کسی نہ کسی وجہ سے اپنے میڈیکل کے پروفیشن کو, ان کو آپ دوبارہ لے آئے اس شعبے میں, تو کیسے؟
اصل میں ہم نے, ہمارا ادارہ جو ہے غیر منافع پخش ادارہ ہے, اور اس ادارے کی بنیاد ہمارے کچھ درد مند پاکستانی جو سعودیہ میں کام کرتے ہیں بزنس مین, انہوں نے اور پاکستان میں موجود آئی ٹی پروفیشنلز نے مل کر اس کی بنیاد رکھی. اور ہمارا پہلا سب سے پہلا گول جو تھا کہ بھائی پاکستانی بچے جو سعودی عربیہ میں پڑھتے ہیں ان کو ہم کس طرح سے ان کے والدین پہ بوجھ کم کریں اور پاکستان سے بیٹھ کے ان کے بچوں کو تعلیم دیں. یہ پہلا ہمارا پروجیکٹ تھا جس میں ہم نے شروع کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پھر احساس ہوا کہ پاکستان کی بہت ساری ڈاکٹرز ایسی ہیں خواتین جو شادی کے بعد چھوڑ دیتی ہیں اپنے پروفیشن کو, اور جب اس کا ایسٹیمیٹ ہم نے پی ایم ڈی سی سے اور منسٹری آف ہیلتھ سے معلوم کیا تو معلوم ہوا قریباً 25,000 سے اوپر ایسی خواتین ہیں جو پچھلے 15 سے 16 سال کے درمیان اپنے پروفیشن سے وہ خیرآباد کہہ کر اپنا ہاؤس جاب کمپلیٹ کر کے یہ اب مختلف ملکوں میں بس گئی ہیں یا پاکستان میں اپنے گھروں میں اپنا بچوں کو پال رہی ہیں, جو بہت اچھی بات ہے اپنے گھر کو دیکھنا, مگر ساتھ ساتھ ان پہ ذمہ داری تھی کیونکہ حکومت پاکستان نے اور ان کے والدین نے کوئی 50 سے 1 لاکھ روپیہ ایک ڈاکٹر پہ خرچ ہوا تھا, تو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی جو ان ڈاکٹرز پہ کی گئی تھی, اور ان کو معاشرے کا ایک کامیاب حصہ, کامیاب لیڈر بنایا گیا تھا ہیلتھ کیئر کے لیے. ہم نے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے ریکویسٹ کی اور ان کو مطلب اس پروگرام کے بارے میں بتایا, اور بڑا ہم بہت شکر گزار ہیں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے کہ انہوں نے کچھ بہت اچھی طرح ہمارا ساتھ دیا, اور ان کے جو پروفیسرز ہیں انہوں نے مل کر ایک کریکولم ڈیولپ کیا, پروفیسر ڈاکٹر جان آرا حسن کی زیر نگرانی اور پروفیسر ڈاکٹر زرناز واحد کی زیر نگرانی شروع کیا, اور ہم نے اس وقت ہمارا ماشاء اللہ جیسے ہم بتاتے ہیں 6 مہینے کا ہم نے کورس اسٹارٹ کیا تھا جس میں ہم ان ڈاکٹرس کو ٹرین کرتے تھے, اور پاکستان میں جو ڈاکٹرز موجود ہیں اور جب یہ اوورسیز پاکستانی ڈاکٹرز چھٹیوں میں پاکستان آتی تھیں تو ہم ان کو کراچی لاہور اسلام آباد میں مختلف ہاسپٹلس کے اندر ان کو تربیت بھی فراہم کرتے تھے کہ یہ مریضوں کو بھی دیکھ سکیں. تو اس طرح آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس 800 ایسی ڈاکٹرز ہیں جن کو اب ہم تیار کر چکے ہیں, اور جب ہم نے ان کو تیار کر لیا تو اگلا مرحلہ ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم کس طرح ان کو فیلڈ میں لائیں, کیونکہ بیرون ممالک جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو فیلڈ میں نہیں آ سکتی بیکاز وہاں کے ہر ملک کا اپنے قوانین ہے, اور پاکستان میں تو چونکہ یہ ڈاکٹرز موجود تھیں تو انہوں نے اپنا مختلف سروسز جوائن کر لی, مختلف گھروں میں کلینکس کھول لیے. تو اسی وقت क्योंकि कोरोना आया जब कोविड-19 का स्टार्ट हुआ तो हमने हुकूमत पाकिस्तान से डॉक्टर अब्दुल बारी साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव है इंडस हॉस्पिटल के उनकी मदद से हमने हुकूमत पाकिस्तान से बात की और उनको अपनी सर्विसेज ऑफर की। हमने कहा हम बिला मुआवजा हमारी डॉक्टर्स वॉलंटियर करना चाहती हैं और पे बैक करना चाहती हैं अपनी आवाम को। तो ये पिछले 6 महीने हम हो गए, 5 महीने हो गए हैं हमें कोविड-19 का पूरा सिंध का प्रोजेक्ट हमारे पास है और इसमें हमने 2000 पेशेंट से शुरू किया था रमजानों के अंदर और होते होते ये 80,000 मरीजों तक पहुंच गया और हमारी ई डॉक्टर्स 450 ई डॉक्टर्स 15 मुल्कों में जो थी वो मिलकर उन्होंने सब ने तहिया किया और पाकिस्तान में भी जो डॉक्टर्स थे उन्होंने तहिया किया और वो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इन तमाम जो घरों में मरीज थे कोविड-19 के उनकी केयर प्रोवाइड करती थी, काउंसलिंग प्रोवाइड करती थी, कोऑर्डिनेशन करती थी, उनको डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करती थी। और इस सब काम करने में हम ये कहने में डेफिनेटली हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं कि चीफ मिनिस्टर सिंह जो है हमारे मुराद अली शाह साहब उनका जो हमला है खासतौर पर डॉक्टर महवेश कलबानी है और उनकी जो टीम है जिसपे और उनको लीड करने में नजम शाह साहब हैं जो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं इन सब ने बहुत बड़ा कलीदी रोल अदा किया और पूरी सपोर्ट प्रोवाइड की ई डॉक्टर्स के लिए। तो हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में सबसे बड़ा ऑपरेशन अगर पाकिस्तान में कोरोना की होम आइसोलेशन जो 90% लोगों पर मुनसर होती है यानी अगर 100 मरीज होते हैं कोरोना के तो उसमें से 90 लोग जो है वो होम आइसोलेशन में होते हैं तो सबसे बड़ा ऑपरेशन सुबह सिंध में हुआ था कोविड-19 होम आइसोलेशन का जो ई डॉक्टर्स ने हैंडल किया और आज हम ये कहते हैं कि बड़ी बड़ी कामयाबी के साथ हम ये कहते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ 3,000 पेशेंट रह गए हैं कोविड-19 के सिंध सूबे के अंदर। ये हमारा रोल था जो कोविड-19 के अंदर हमारी ई डॉक्टर्स ने बहुत कामयाबी से अदा किया और इसमें हम उनको सबको बहुत मुबारकबाद देते हैं उनके इस डेडिकेशन की।
तो ये जो 800 टोटल डॉक्टर्स हैं ई डॉक्टर्स ई रेडी डॉक्टर्स आपके पास ट्रेंड हैं जो रिफ्रेशर कोर्सेज करके और सर्टिफाइड फॉर्म के साथ अब अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं तो कितने अरसे में आपने इनको ट्रेंड किया?
ये हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कोई 2017 में स्टार्ट हुआ था और हमने मुख्तलिफ बैचेस किए थे, 6-6 महीने के बैच हमने रन किए थे और जब कोई एक बैच खत्म होता था तो उसको हम छोड़ते नहीं थे और उनके लिए मजीद और मजीद कोर्सेज कराते थे जिसमें प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग है, फार्मा के कोर्सेज हैं, मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन उनके लिए कराई जाती थी। तो हमारे साथ अभी अब मुसलसल ये डॉक्टर्स रबते में रही और इनकी ट्रेनिंग कराते थे मरीजों को किस तरह वीडियो पे देखा जाता है, कैसे टेलीफोन पे देखा जाता है। हमारा इरादा ये था कि ये सिर्फ आम डॉक्टर ना बने बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्टर बने यानी डिजिटल हेल्थ के प्लेटफॉर्म से इनको पता हो कि टेली मेडिसिन क्या होती है, टेली हेल्थ क्या होती है, जिसकी वजह से इनकी एक वैल्यू क्रिएट होगी। तो ये तमाम इसमें से बहुत बड़ी तादाद है जो हमारे साथ 2017, 2018, 2019, 2020 यानी तकरीबन 3 साल से हमारे साथ तकरीबन ये एफिलेटेड है और अभी भी करंट हमारा आखिरी बैच जो 5वां बैच चल रहा है इसमें भी 200 के करीब डॉक्टर्स हैं जो इंशाल्लाह सितंबर के महीने में पास आउट करेंगे।
लेकिन इसमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं है, ये सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं।
ये तमाम मोस्टली जो है एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं और मगर एक अच्छी तादाद अब हमारी वक्त के साथ साथ ऐसी डॉक्टरों की भी आ गई चूंकि हमारे प्रोजेक्ट का काफी नाम हो गया था तो ऐसी डॉक्टर्स की भी तादाद आ गई जो स्पेशलाइज थी जो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुकी थी और जो चाहती थी कि उनकी बेसिक्स को रिवाइव किया जाए, वो बेसिक्स भूल चुकी थी तो ये प्रोग्राम ने उनकी बेसिक्स को फ्रेश किया है और अपडेट किया है।
ठीक, अच्छा, और अब आपका ये अगला प्रोजेक्ट जो आप शुरू करने वाले हो रहे हैं यमन में, कुछ उसका जिक्र कीजिए कि वहां तक आप इन ई लेडी डॉक्टर्स को लेकर जा रहे हैं तो किस अंदाज में, क्या प्रोजेक्ट है वो?
ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ई डॉक्टर का, जब ये कामयाब हुआ और आगे इसका अखबार में बहुत ज्यादा कोविड-19 ऑपरेशन के बारे में आया तो कोविड-19 से रिलेटेड कुछ तंजीमें जो यमन में काम करती हैं हमारी और उन्होंने हमें अप्रोच किया और कहा कि हम उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करें। इस सिलसिले में हमने अपने अपने जराए को इस्तेमाल करते हुए हमने वहां पे एक क्लिनिक स्टैब्लिश किया है अभी मारिफ सूबे के अंदर जहाँ पे काफी बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे हैं जो जिनके पास क्लिनिक की दवाओं की सहूलत और डॉक्टर्स की सहूलत नहीं है। तो यहाँ हमारी जो ई डॉक्टर्स हैं वो टेली कम्युनिकेशन के जो हमारी प्लेटफॉर्म है, डिजिटल हेल्थ के जो इक्विपमेंट है इसके जरिए इनको एसेस करेंगी और इनको मुनासिब इनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगी मारव सूबे के अंदर उस क्लिनिक के अंदर बैठे हुए अपने अपने घरों से बैठ के उनका इलाज करेंगी। ये पहली दफा होगा यमन की हिस्ट्री में इस किस्म का क्लिनिक कोई कायम हो, और इसके इसके लिए बकायदा तौर पर हमारे सब डिस्ट्रिक्ट से हमने परमिशन भी हासिल कर ली है, और इंशाल्लाह सितंबर के 15th या 20th तक हमारा ये पहला क्लिनिक स्टार्ट हो जाएगा, इसका पायलट स्टार्ट हो जाएगा।
तो इसकी फंडिंग कौन करेगा इस प्रोजेक्ट की?
इसकी फंडिंग फिलहाल तो हमारा इदारा खुद करता है, खुद कर रहा है अपने तौर पर। हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं जो जो काफी मुखय्यर हजरात हैं, उन्होंने भी हमें वादे किए हैं इसकी फंडिंग के लिए, और अभी फिलहाल तो हम इसको एजुकास्ट एज एन इदारा खुद इसको फंड कर रहा है।
तो ये है वो प्रोजेक्ट जो कि एजुकास्ट का जो इदारा है, पाकिस्तान की लेडी डॉक्टर्स को रिफ्रेशर कोर्सेज करवा कर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की मदद से दोबारा ऑनलाइन उनको ले आए हैं, उनके अपने प्रोफेशन में वापस लाए हैं, और वो पैसा जो कि हुकूमत पाकिस्तान का उन पर सर्फ हुआ था उसको वापस लाने की एक कोशिश कर रही हैं। तो बेहद शुक्रिया अब्दुल्ला भट्ट साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और गुफ्तगू में शामिल करते हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के COVID-19 मॉनिटरिंग सेल की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर महविश कलबानी को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महविश कलबानी साहबा।
वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
तो बताइए कि कैसे हुकूमत सिंध के COVID-19 मॉनिटरिंग सेल और एजुकास्ट ने मिलकर COVID-19 के दौरान पाकिस्तान और दुनिया भर में मौजूद ट्रेंड खवातीन ई डॉक्टर्स की मदद से COVID-19 के हजारों मरीजों को इलाज मुआलजे और तिब्बी सहूलियात और गाइडेंस फराहम की?
जी, कोविड मॉनिटरिंग सेल ये चीफ मिनिस्टर सिंध का एक पर्सनली सुपरवाइज्ड इनिशिएटिव था जो सीएम सेक्रेटेरिएट से बराह रास्त पेशेंट्स को रीच आउट करता था। हमारे पास एक सेंट्रली मेंटेन डेटाबेस था ऑफ ऑल द पेशेंट्स व्हिच वर गेटिंग टेस्टेड अक्रॉस प्रोविंस। हमने टेस्टिंग फैसिलिटीज को एक्सपेंड किया, इनिशियली हमने जो एस्टेब्लिश टेस्टिंग सर्विसेज थी उनको हायर किया था, दैट वाज आगा खान, SIUT, इंडस हॉस्पिटल, जियाउद्दीन। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जैसे JBMC, सिविल हॉस्पिटल, डाओ, ओजा, इन सेंटर्स में भी टेस्टिंग फैसिलिटी हमने एक्सपेंड करना शुरू की। जैसे जैसे टेस्ट रिजल्ट हमारे पास आते थे वो सारा डेटाबेस हमारे सेंट्रल डेटाबेस में जमा हो जाता था, दैट वाज इन द सीएम सेक्रेटेरिएट, व्हिच वाज ऑफ इनॉर्मस हेल्प इन मेंटेनिंग एंड कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ पेशेंट्स व्हिच आर कमिंग इन एंड द नंबर ऑफ पेशेंट्स व्हिच आर गेटिंग डिस्चार्ज्ड और इन अदर वर्ड्स दे आर गेटिंग रिकवर्ड। इस मॉनिटरिंग सेल की जो हमारे जो हेड थे सर फयाज जदवी साहब थे, उनका ही उन्होंने इसको स्पेयर हेड किया था एंड आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस। इसमें हमने इस मॉनिटरिंग सेल को हमने एक्टिवेट इस तरह किया था कि डेटाबेस हमारा था और हमने मिस्टर अब्दुल्ला भट्ट जो एजुकास्ट के रुए रवा हैं उनके अपने एक इनिशिएटिव के तहत उनके पास बेशुमार ई डॉक्टर्स हैं to the tune of 400 plus e-doctors spread across the world from Australia, Canada to Middle East and even in Pakistan. हमारा डॉक्टर अब्दुल्ला के साथ एक MOU हुआ था जिसके तहत हमने अपने पेशेंट्स का डेटाबेस उनसे शेयर किया था और उनके e-doctors की खिदमात को हमने बरोए कार लाके इन पेशेंट्स को इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे हमें रीच आउट किया था। इन पेशेंट्स को ये सारी ई डॉक्टर्स ऑलमोस्ट एवरी डे कॉल करके उनसे पूछती थी कि उनके टेस्ट रिजल्ट्स पेंडिंग हैं तो वो आए हैं या नहीं आए हैं, उनके टेस्ट रिजल्ट्स क्या आए हैं, और बेस्ड ऑन देयर सिम्टम्स उनको अगर कोई तकलीफ है, विच वॉज मोस्ट फ्रीक्वेंटली कि वो हाइपोक्सिक होते थे, ब्रेडिकार्डिक होते थे, टैकीकार्डिक होते थे, या उनकी ऑक्सीजन स्टैट्स जो थी वो स्टैगर कर रही होती थी, ज्यादातर उनके सारे सिम्टम्स जो थे वो पल्मोनरी थे, लेकिन कुछ और भी एक्स्ट्रा सिस्टमिक सिम्टम्स भी उनके ऊपर साथ आ रहे थे, जो एक तरीके से आप समझे कि हमारे लिए एक सेपरेटली इंडिपेंडेंटली और पैरेलल एक रिसर्च डेटाबेस भी बनता चला गया रिगार्डिंग दिस कोविड नॉवल COVID-19 डिजीज। इन पेशेंट्स के साथ इन ई डॉक्टर्स का एवरी डे एक अप क्लोज एंड पर्सनल लिंक रहता था और हमें एक एक पेशेंट की खबर रहती थी कि कौन सा पेशेंट हमारा स्टेबल है, कौन सा एसिम्टोमेटिक है, कौन सा सिम्टोमेटिक है, कौन सा ऐसा है जिसे फौरी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। इन्हीं डॉक्टर्स की मदद से हमने एक लेजॉन क्रिएट किया था अपने हेल्थ डिपार्टमेंट पर्सनल के साथ। हमने अमान फाउंडेशन, छीपा और ईडी एम्बुलेंसेस के साथ इनका एक डायरेक्ट लिंक करवा दिया था कि जिन पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए थी उनकी बर वक्त फराहमी हमने इंश्योर कराई थी। एट द सेम टाइम हमने होम टेस्टिंग सर्विस को भी इनकरेज किया था, क्योंकि अगर एक पेशेंट है उसको सिम्टम्स है कोविड के और आइसोलेशन उसके लिए मस्ट है तो उसको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। वी इंश्योर्ड द टेस्टिंग सर्विस एट द डोर स्टेप। ये भी एक नई हम लोग ने एक सर्विस को हमने फरोख दिया था ड्यूरिंग दिस होल कोविड 19 पेंडेमिक विद इन सिंध। अब माशाल्लाह सिचुएशन ये है कि हमारा नंबर जो है इन्फेक्टेड पेशेंट्स का इट हैज कम डाउन टू एन इम्प्रेसिव लो। मोस्ट ऑफ आर पेशेंट्स आर होम आइसोलेटेड और लोग इस हद तक भी एजुकेट हो चुके हैं कि अगर उनको सिम्टम्स है और किसी भी वजह से वो टेस्ट नहीं कर पा रहे तो दे आर नॉट फ्रेटिंग अबाउट इट, दे आर जस्ट स्टेइंग पुट अपनी अपनी जगह पे। वो वहीं पे मौजूद है, ना सिर्फ खुद को आइसोलेट किया है उन्होंने अपनी फैमिली को भी आइसोलेट किया है। टेस्टिंग पे जोर देने के बजाय अब उन्होंने अब कोविड 19 से इतना तारुफ हो चुका है कि लोगों को पता है कि वेदर द टेस्ट रिजल्ट्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव सेल्फ आइसोलेशन इज द आइडियल थिंग टू डू।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर महविश कलबानी साहबा आपका, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप चीफ मिनिस्टर सिंध के कोविड मॉनिटरिंग सेल की कोऑर्डिनेटर हैं। आपने बड़ी तफसील से बताया कि किस तरह हुकूमत सिंध ने ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एजुकास्ट उसके ई डॉक्टर्स के साथ मिलकर कोविड 19 के पेशेंट्स को इस दौरान सहूलियात पहुँचाई, इलाज की भी और काउंसलिंग की भी, और जहाँ जहाँ भी वो थे उनके घरों तक भी उनको टेस्टिंग की सहूलत फराहम करने का बंदोबस्त किया। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
अमेरिका वॉशिंगटन से आज की राउंड टेबल, मैं हूँ यास्मीन जमील। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ कराची से टेलीफोन पर मौजूद हैं एक ई डॉक्टर अदिया अहमद, जो इस प्रोजेक्ट में जो कि ई डॉक्टर का चल रहा है पाकिस्तान में और दुनिया भर में भी अब इसको की एक्सपेंशन हो रही है उसमें वॉलंटियर कर रही हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कहाँ से ये ट्रेनिंग जो थी, जो रिफ्रेशर कोर्स किया और क्यों इन्होंने डॉक्टरी छोड़ी थी, डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर क्यों नहीं बनी, प्रैक्टिस क्यों नहीं की, तो ये सब बातें इन्हीं से पूछते हैं। टेलीफोन पर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अदिया अहमद साहिबा।
जी वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ। आप बताइए कि आपने MBBS किया, डॉक्टर बनी और फिर डॉक्टर नहीं बनी, क्यों?
नहीं, डॉक्टर तो बने और बने ही रहे, बट वो ब्रेक इसलिए लिया था कि जब थोड़ा हम अपनी पर्सनल लाइफ में मूव ऑन करते हैं तो थोड़ा सा सबकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं। सबकी मेरी ये थी कि पहले मैं अपनी नई जिंदगी में जरा सेटल हो जाऊं, फिर जो है दोबारा अपने पेशे की तरफ वापस आऊंगी।
अच्छा, तो फिर आप सेटल हो गई, कितने अरसे में सेटल हुई और कब वापस आई फिर?
मुझे जी, मैं 2013 मैं मेरी शादी हुई थी, 2014 के स्टार्ट में, तो मैं जो हूँ 4 years में फिर वापस आ गई। तीन चार साल में मैंने कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से ग्रेजुएशन की अपनी, मतलब MBBS मैंने कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से किया जो अब्बासी शहीद के साथ मुंसलिक है, और फिर जो ये रिफ्रेशर कोर्स है ई डॉक्टर का वो मैंने एजुकास्ट के थ्रू डाउ यूनिवर्सिटी के हेल्थ साइंसेज से किया।
तो कितने अरसे का था?
2018 में।
कितने अरसे का ये कोर्स?
2018 में हमने ज्वाइन किया था, ये 6-6 महीने का हमारा था। उसमें हमारी जो है उसकी ट्रेनिंग भी थी, हॉस्पिटल अस्पताल जाके भी, और लेक्चर्स भी थे, हमें ऑनलाइन लेने होते थे। इसके अलावा हमारा एग्जाम था प्रॉपर एक जो कि कंडक्ट हुआ था, और एग्जाम जो हुआ फिर उसके बाद हम लोग एज ई डॉक्टर हम लोग हमें उसका वो टाइटल मिला।
अच्छा, तो ये कोई सर्टिफिकेट मिला जिसकी कोई अहमियत है?
जी ये जी जी बिल्कुल, ये हमें जो है फैमिली मेडिसिन सर्टिफिकेट कोर्स है, तो ये रिफ्रेशर कोर्स था और ये फैमिली मेडिसिन सर्टिफिकेट कोर्स है. फिर हमारी प्रॉपर एक जो है सेरेमनी भी हुई थी सर्टिफिकेट बांटने वाली जिसे हम कहते हैं. तो हमें ये प्रॉपर डाउ यूनिवर्सिटी में हुई थी, वहाँ के वाइस चांसलर ने और प्रिंसिपल के उसमें हमें प्रॉपर सर्टिफिकेट कोर्स मिला. तो ये हमारा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था और मैं पहले बैच से हूँ तो अब तो माशाल्लाह ये काफी तरक्की कर ली हमारे इस प्रोजेक्ट ने, तो अब ये काफी आगे बढ़ गए हम.
तो अब ये बताइए कि COVID-19 के दौरान खासतौर पर आपने क्या खिदमत अंजाम दी.
जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि हर एक मुश्किल के साथ अल्लाह ताला की कोई मसलियत होती है. तो ये मसलियत हमारे लिए इस तरह आई कि हमें बहुत मौका मिला कि अपनी जो है ना कौम को सर्व करने का. तो हुआ ये कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ये COVID-19 में जो सात सिंध हुकूमत के साथ मर्ज होके टेली हेल्थ ने बहुत साथ दिया है पूरे मुल्क का पूरे कौम का, खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके. तो हमारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था. तो अब जो है तो हमने जो घर पे पेशेंट्स आइसोलेटेड थे उनकी डेली बेसिस पे रोजाना के बेसिस पे कॉल के थ्रू फोन करके हम उनको मॉनिटर करते थे, उनकी तबीयत पूछते थे, उनके अलामात के बारे में पूछते थे, तबीयत के बारे में पूछते थे. और इससे ये अंदाजा हुआ कि इतनी ज्यादा इसकी जरूरत थी कि जो लोग घर पे आइसोलेटेड थे अपनी फैमिली से अलग, तो उनको इतना ज्यादा एक मतलब हवा का ताजा झोंका लगा कि उन्हें एक डॉक्टर रोज बगैर अपने गर्ज के रोज फोन करके उनकी खैरियत पूछ रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं. और दो किड्स कम सीवियर उसके थे, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमारे मरीजों की तरफ से. और जो दुआएं हमने उसमें कमाई है ना, वो हमें अब लगता है कभी कहीं फंसते हैं कि आसानी से निकल गए, तो ये उन दुआओं की वजह से होता है.
तो कितने पेशेंट्स आपने ओवरऑल देखे इन 6 महीने में?
मैं सबसे शुरू के उन डॉक्टर्स में हूँ जिन्होंने आई थिंक पहले 5 जो थे उनमें से मैं ही फर्स्ट में थी. तो आई थिंक अब मैं अराउंड 300 तो देख ही चुकी हूँ, 250 से 300.
तो वो किस किस्म के?
ज्यादा ही होंगे, कोई काउंट नहीं है. जी ज्यादातर मैम वो ये थे कि जो घर में आइसोलेटेड थे, जिनको कम शिद्दत के सिम्टम्स थे या कोई सिम्टम्स नहीं थे, यानी कि जिनको जो घर पे मैनेज हो सकते थे. और जो हमें लगता था, क्योंकि एक स्टेज ऐसा आया था ईद उल फितर के बाद के अस्पतालों में भी जगह नहीं थी, तो जो लोग थोड़ा सीवियरिटी की तरफ जा रहे थे उनके लिए भी जो इंतजाम घर पे होने चाहिए थे वो भी हम लोगों ने मैनेज किए. तो हर तरह के थे, जिनको थोड़ी सांस में दिक्कत हुई, जिनको सिर्फ बुखार और खांसी हुई, जिनको कोई अलामत नहीं हुई, जिनकी सिर्फ स्मेल चली गई. तो यू नो इस तरह के हर तरह के सिम्टम थे. और इसमें हर एज ग्रुप हमने सारी उम्र के लोगों को हमने कवर किया, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो बीच के उम्र के लोग हों, चाहे वो हों जिन्हें बहुत सारी बीमारियां हैं पहले से, चाहे वो हों जिन्हें कुछ भी नहीं है. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफी बड़ा इसका स्कोप था, जिसको हमने सब ई डॉक्टर्स ने मिलके अल्लाह का बहुत शुक्र है और तरीके से इसको मैनेज कर लिया.
तो क्या ये वीडियो कॉल्स भी करती थी या सिर्फ ऑडियो कॉल्स आप लोग कर रहे थे?
ये ऑडियो कॉल्स होती थी और अगर हमें जरूरत पड़ती थी कि वो पेशेंट को किसी बड़े हाई कंसल्टेंट की जरूरत है, तो हम उन कंसल्टेंट को हमारे पैनल पे होते, तो हम उनसे भी केस डिस्कस करते थे या हम उस पेशेंट को उस कंसल्टेंट को भी रेफर करते थे, ताकि वीडियो कॉल के थ्रू उस कंसल्टेंट से भी उनकी बात हो जाए. तो ये एक पूरी एक टीम एफर्ट थी हमारी. जहां हमें लगता था कि हमें किसी स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करना है तो हम उसे इन्वॉल्व करते थे, या हमें लगता था हमें किसी पेशेंट को जो कि सीरियस हो रहा है और उसे अस्पताल मुंतकिल करना है तो हम अस्पतालों में उनके लिए जगह भी अरेंज कराते थे.
एडुकास्ट का था कि ओवरऑल कोई कंपनी?
एडुकास्ट और सिंध गवर्नमेंट के मिलके एक हमारी टीम थी, जिसमें हमारे पास उन्होंने हमें एक्सेस दिया हुआ था कि हम उनकी जो फोकल पर्सन मेन सीनियर डॉक्टर्स हैं दो, उनके साथ हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे थे, तो हम उनके साथ केस डिस्कशन भी करते थे. इसके अलावा हमारे पास जो हर एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर है उनके साथ भी हमारी जो है वो कोलैबोरेशन थी, कि हम उनसे भी हमें उनके नंबर दिए गए थे कि अगर हमें कोई टेक्निकल या कोई इस तरह का मसला आता है कि किसी को कहीं जो अरेंज कराना है कुछ, तो हमारे पास उसका भी नंबर हमारे पास मौजूद था. और हमारे पास अस्पतालों के जो स्पेशलिस्ट हैं कुछ उनके भी नंबर्स थे, इवन इमरजेंसी नंबर्स भी हमने जो 24 घंटे हेल्पलाइन है वो भी ऑन थी, तो वो हमने हर मरीज को दी हुई थी और हर मरीज को ये सहूलत भी थी कि वो हमें भी कॉल बैक कर ले अगर हमारी कॉल से पहले उसको जरूरत पड़ रही है हमसे बात करने की, तो उसके पास ये सहूलत मौजूद थी कि वो हमें कॉल बैक कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट था ये सब कुछ।
तो आपने ये सारा काम वॉलंटियर तरीके से किया?
जी बिल्कुल बिल्कुल,
कुछ नहीं किया, कुछ नहीं लिया उनसे?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमने कुछ भी नहीं, ये शुरू में ही हमसे कहा गया था कि वॉलंटियर वर्क है, तो हमने बहुत ही दिल तहे दिल से जो है इसको कबूल किया था और हम अभी तक इसको बहुत अच्छे से ओन करते हैं एंड बहुत ज्यादा मतलब एक सर खुशी से और फखर से बुलंद होता है कि इस पेंडेमिक में हमने कौम की मतलब वाकई जो एक ख्वाब देखा था ना बचपन में कि बड़े डॉक्टर बन के हम कौम की खिदमत करेंगे, तो वो लग रहा है कि इसके जरिए हमारा पूरा हुआ है कुछ हद तक।
वरना तो आपका आप समझते हैं कि वो पीरियड जो आपने डॉक्टर बनने के बाद कोई काम किए बगैर डॉक्टर किए बगैर वो जाया हुआ था, वो कवर हो गया, अब हो गया इन 6 माह में।
आई थिंक वो इसलिए नहीं हुआ था कि हम लोग लर्निंग फेज में तो थे, हम लोग मतलब आप चाहे घर बैठ के लें या कहीं बाहर से पढ़ना और इल्म हासिल करना तो रुकता नहीं है, और आजकल के जमाने में जबकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है तो घर बैठे भी बहुत सारी चीजें आप लोग सीख सकते हैं, और ये जो 2020 है इसने तो साबित कर दिया है कि ये दौर जो है चाहे वो घर बैठे शॉपिंग का हो, घर बैठे पेशेंट वो हो, कंसल्टेशन टेली हेल्थ हो, या फिर ग्रोसरी ऑनलाइन, मतलब कोई भी चीज हो वो ऑनलाइन, इस साल ऑनलाइन चीजों की वो अहमियत उजागर हुई है, तो जो हमने 2 साल पहले ई डॉक्टर डाओ वालों ने हमें बनाया उसकी जो अहमियत इस साल आई है आई थिंक वो मेरे ख्याल से वो कभी नहीं आई थी, तो वो इसलिए जाहिर है कि जब भी हम मतलब मैं अपने शोबे से मुंसलिक चीजें पढ़ती रहती थी, इन टच इस तरह जरूर रहती थी कि कुछ ना कुछ करती रहती थी कि कोई कोर्स ले लिया, कोई सेमिनार कर ले लिया, तो इस तरह रहते थे, लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइफ में अभी आके वाकई लगा कि वो जाया नहीं हुआ टाइम, और हम अभी भी जो है अगर लग के करें तो हमें अल्लाह का शुक्र है अभी जज्बा बाकी है बहुत।
तो अब जो पाकिस्तान में अब तकरीबन कहते हैं कि लॉकडाउन खत्म हो गया है और स्कूल और दूसरे इदारे भी खुलने लगे हैं, तो क्या अभी भी आपका ये सिलसिला ई डॉक्टर्स की जो प्रैक्टिस है वो आप कर रही हैं?
जी बिल्कुल, हम अभी हैं क्योंकि अभी भी केसेस हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि सब मतलब सब खुल गया है इसलिए ये नहीं है कि खत्म हो गए केसेस, बेशक पहले से कम हो गए और ये जो पिछले 4-5 महीनों की मेहनत है सबकी मिलके सारे सारे डॉक्टर्स की, ये सिर्फ हम नहीं, तो ये उनकी कंबाइन कोशिश है, लेकिन अभी भी हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, और अभी भी हमारे पास केसेस हैं और हर तरह के केसेस हैं, चाहे वो अंदरूने सिंध के हों, शहर के हों, सिंध के किसी भी शहर के हो, हम सिर्फ कराची को कवर नहीं कर रहे, हम काफी बड़ा पूरा सिंध ही कवर कर रहे हैं, तो हम अभी भी देख रहे हैं बिल्कुल, चाहे इतवार हो, ईद हो, 14 अगस्त हो, कोई भी चीज, हम अपनी ड्यूटी अपनी पूरे तौर पे कर रहे हैं।
तो यानी ये आपका पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि सिर्फ सिंध पर फोकस्ड है ये डॉक्टर्स?
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से इसको अभी भी पूरा फुल फ्लेज हम इसको कर रहे हैं कंडक्ट, और अल्लाह पाक करे कि ये खत्म हो दुनिया भर से और खास तौर पे पाकिस्तान से, तो ये हमारे लिए कामयाबी से कम नहीं होगा।
तो नहीं ये क्योंकि ये तो आप तो ऑनलाइन है, तो क्या सिर्फ सिंध के इलाकों तक ही आपके जो पेशेंट्स हैं महदूद हैं या पाकिस्तान भर से भी कोई आपको कॉल कर सकता है?
नहीं, ये सर्विस जो हमारी है ये हमें जो है सिंध हुकूमत के से कोलैबोरेट हुई भी है, मतलब उनके साथ मुंसलिक है, तो हम अभी पूरे सिंध को कवर कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें किसी के थ्रू किसी के जरिए पता लगता है कि कोई पेशेंट है, जैसे अब काफी लोगों को, जैसे हमारा कोई मरीज है उससे हमारी अगर अच्छी वो रेपो बन गई है तो वो चाहता है कि हम उसके रिश्तेदार या किसी को कुछ हो जाए तो वो हमसे कांटेक्ट करे, तो फिर वो हमारे पैनल पे कॉल करके बोल देता है कि हमें इस डॉक्टर से प्लीज रब्ता करा दे, हमारा हम चाहते हैं कि वो ही डॉक्टर देखे, तो फिर हम उसको बाउंड नहीं करते, हम देख लेते हैं, ये कोई वो नहीं है, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स हैं जो वैसे मरीज पंजाब से हैं लेकिन यहाँ सेटल हुए हैं, तो हम उनको भी देखते हैं, ये नहीं है कि हम उन्हें नहीं देखते या कुछ, तो अगर वो इस पैनल के थ्रू नहीं आते और बाहर से कहीं हमें आते हैं तो हम उनको कभी मना नहीं करते, उनके लिए भी हमारी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट ही है ये, और वॉलेंटियर है, और हम मदद करने में किसी से नहीं झिझकते, चाहे वो सिंध हो या कहीं से भी हो। इवन हमारे ये सोशल मीडिया के थ्रू काफी पेशेंट्स मरीज हमें जो है ना रابطہ करने की कोशिश करते हैं, तो इंडिया हो या कुछ भी हो कहीं से अगर कोई रابطہ करेगा और हमें रेफर करता है, अगर जैसे जब हमारे प्रोग्राम की ये प्रमोशन हुई थी तो सोशल मीडिया के थ्रू, तो अगर कोई हमें रीच आउट करना चाहते हैं तो हम मना नहीं करते हमारे पास, क्योंकि हम इसलिए बैठे हैं कि दूसरों की मदद कर सकें।
तो इस वक्त अगर कोई आपसे रابطہ करना चाहे या आपसे कांटेक्ट करना चाहे कोई भी पाकिस्तान भर में या सिंध में, तो उनको पता कैसे लगेगा कि आपकी हेल्पलाइन क्या है?
हमारी हेल्पलाइन, एक तो ये जब ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब हर जगह ही सर्कुलेट की थी, और जो ये सिंध हुकूमत की जो ये कंट्रोल रूम है 24 घंटे जो हेल्पलाइन खुली हुई है, ये जो जब किसी मरीज को कोरोना डायग्नोस होता है तो उसके पास जब मैसेज आता है तो उसके पास ये नंबर आते हैं कि ये हमारे दो इमरजेंसी नंबर है, अगर आपको कुछ मसला हो तो आप इन पे रابطہ कर सके। और ये अब काफी ज्यादा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी, अगर हम लोग सब जगह ही हैं अब डॉक्टर्स भी, तो हम भी पोस्ट करते रहते हैं अगर किसी को चाहिए तो आप प्लीज हमसे रابطہ करें या आप इस नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं।
तो क्या वो नंबर इतना आम है कि आप इस वक्त ही बता पाएंगे?
हमारे दो जो इमरजेंसी नंबर है मैम वो है 1-1021 और 1025 1021 और 1025, ये हमारे दो इमरजेंसी नंबर हैं। और इसके अलावा एक और खास चीज ये है कि जो हमारे तौलीदी सेहत की वो है कि जो माएं बनने वाली हैं खवातीन या जिनको और कोई खवातीन रिलेटेड इश्यू होते हैं और वो आजकल या जब पेंडेमिक उरूज पे था तो हॉस्पिटल नहीं जा सकती, तो उनके लिए खास एक अलग हेल्पलाइन जो मैटरनल तौलीदी सेहत की हेल्पलाइन है वो भी लॉन्च हुई थी, जो पीए से हफ्ते तक सुबह 9 से 5 बजे तक वर्किंग में होती है, तो वो उनके लिए भी ये सहूलत थी कि जाहिर है बहुत से नहीं जा पा रहे थे अस्पताल के, नहीं ले रहे मरीज नहीं ले रहे या कुछ, तो ये हमारे यहाँ मतलब हर एस्पेक्ट को हमने कवर करने की कोशिश की है। इवन जो है हत्ता कि जब ये कोविड आया तो जहनी परेशानी से भी मरीज बहुत दो चार हुए ना, क्योंकि कमरे में बंद रहना आसान नहीं है, बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, उसके लिए भी हमने जो है जो एक नफ्सियाती सपोर्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी लॉन्च की कि अगर किसी को चाहिए तो हम वो भी मुहैया करेंगे।
तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अदिया अहमद साहबा, ई डॉक्टर हैं आप और आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और लोगों को बताया कि किस तरह ई डॉक्टर्स जो हैं खवातीन ई डॉक्टर्स, उन्होंने वापस आई हैं अपने शोबों में जिनको वो छोड़ के जा चुकी थी या प्रैक्टिस नहीं कर सकी थी, अब वो दोबारा आवाम की खिदमत के लिए अपने इर्द के मरीजों की खिदमत के लिए ऑनलाइन मौजूद हैं।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए,
दूर जाने की जरूरत नहीं, VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील आज की राउंड टेबल के साथ, और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं सऊदी अरब से एक ई डॉक्टर, डॉक्टर मिशा तनवीर। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ई डॉक्टर्स के प्लेटफॉर्म से क्या खिदमात अंजाम दी COVID-19 के दौरान पाकिस्तान के मरीजों के लिए और दुनिया भर में अगर कोई इनसे रابطہ किसी ने किया तो किस तरह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मिशा तनवीर साहिबा।
वालेकुम सलाम।
मिशा बताइए कि आपने
थैंक यू सो मच आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिशा, आप बताइए कि आपने कब अपने डॉक्टरी को छोड़ा था और कब आपने इसको दोबारा ज्वाइन किया एज ई डॉक्टर?
मैंने 2012 में ग्रेजुएट किया था अपने मेडिकल स्कूल से, इसके बाद एक साल की मेरी हाउस जॉब रही।
कहाँ से?
फिर उसके जी मैंने कराची से किया है, डाउ यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आ गई थी आफ्टर मैरिज, तो यहाँ पे जो है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं थी और ऑब्वियसली फिर मेरे साथ एक बेबी भी था तो मुझे उसकी टेक केयर के लिए सही नहीं लगता था कि किसी केयर में केयर गिवर मैं हूँ, तो आई ऑप्टेड फॉर जो है कि मैं एट होम रह के अपना काम करूँ।
कैसे आप फिर दोबारा इस शोबे में वापस आई?
मैं रेगुलरली यहाँ पे ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस थी वो करती रहती थी, डिफरेंट एग्जाम देती रहती थी. फिर ये कि मुझे एजुकास्ट का पता चला कि वो लोग भी डाउ यूनिवर्सिटी के थ्रू ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, तो मैंने उनमें एनरोल किया. और फिर अब्दुल्ला भट्ट साहब जो उसके CEO हैं, उन्होंने और सी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जिसमें हम लोगों को एज ई डॉक्टर काम करने का मौका मिला. और जैसे ही पैंडेमिक शुरू हुआ तो पैंडेमिक एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज की तौर पर भी आया कि हम लोगों के लिए, कि हम लोग रिमोटली बैठ के जो है फिर अपने पाकिस्तान में जितने भी होम आइसोलेशन के पेशेंट्स हैं उनको हम मॉनिटर करते थे. और हर एवरी सेकेंड डे या एवरी थर्ड डे हम उनको एज देयर कंडीशन डिक्टेट्स उस तरह से हम उनको फॉलो अप करते रहते थे.
तो कितने डॉक्टर, कितने मरीज आपने देखे इन COVID-19 के दिनों में?
हमको वीकली पेशेंट्स अलॉट होते थे. ऑलमोस्ट एवरी 10 डेज हमारे पेशेंट्स चेंज हो जाते थे और एवरी 10 डेज हमको 30-40 पेशेंट्स मिलते थे. फिर हम उनकी जब क्वारंटीन पीरियड ओवर हो जाता था, जब वो क्योर्ड डिक्लेयर हो जाते थे, तो हमारी लिस्ट से वो चले आते थे, डिस्चार्ज हो जाते थे. और फिर हमें न्यू पेशेंट्स असाइन करते थे. ये सिर्फ गवर्नमेंट के साथ कोलेबोरेशन थी जिसमें हम लोगों ने काम किया था.
तो अब ये सिलसिला अभी भी जारी है?
जी जी बिल्कुल, अभी भी जारी है. जाहिर है पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ, अभी भी वायरस है जो सर्कुलेट कर रहा है, लोगों को ट्रांसमिट हो रहा है.
तो क्या जो सऊदी अरब में खवातीन है, जो सऊदी अरब के पेशेंट्स है, वो भी आपसे रब्ता कर पा रहे हैं?
नहीं, सऊदी अरब में ये प्रोग्राम हमारा सऊदी अरब में नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान में और एक्सक्लूसिवली सिंध का पेशेंट्स का प्रोग्राम है. तो क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया है, इसलिए ये सिंध के ही मरीज हमारे पास होते हैं.
तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिशा तनवीर, आप एक ई डॉक्टर हैं आजकल, सऊदी अरब से आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बेहद शुक्रिया.
VOA उर्दू अब आपके हाथ में.
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए.
दूर जाने की जरूरत नहीं, VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं.
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तियाब है.
VOA उर्दू अब आपके हाथ में.
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज की राउंड टेबल, मैं हूं यास्मीन जमील और अब हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं एक और ई डॉक्टर, जो ई डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस भी कर रही हैं. यूएई से इनका ताल्लुक है, वहां भी ये डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन आजकल ये कनाडा शिफ्ट हो गई हैं और कनाडा में भी ये अपने हेल्थ के शोबे से और मेडिसिन के शोबे से वाबस्ता हैं. इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अलीना अली साहिबा.
वालेकुम अस्सलाम.
तो बताइए कि आप ये जो ई डॉक्टर का जो सिलसिला है, ये आप कब से इसके साथ शामिल हुई और कैसा ये आपका तजर्बा जा रहा है?
जी यास्मीन, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड और मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे. मैं एक पाकिस्तान की मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद मैं UAE में थी 12-13 ईयर्स से और फिर मैं कनाडा मूव हो गई हूँ कपल ऑफ मंथ्स अगो. और ई डॉक्टर से मेरा ताल्लुक इस तरह से है क्योंकि मैं डाउ की ग्रेजुएट हूँ और ई डॉक्टर्स जो है वो एजुकास्ट और डाउ का एक जॉइंट वेंचर था और उसमें फैमिली मेडिसिन का बहुत स्कोप था क्योंकि फैमिली मेडिसिन के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे थे. तो मैंने UAE से वो प्रोग्राम किया था, कुछ वर्कशॉप्स जाके पाकिस्तान में अटेंड की थी. बहुत डाइवर्सिफाइड अच्छा कोर्स प्रोजेक्ट था ये. और उसके बाद हम लोगों को प्रपोज किया गया था कि इस टाइम पे जब ये कोविड का पैंडेमिक पूरी दुनिया में चल रहा है और every country is going through crisis, तो हम अपने मुल्क को सर्व कर सके डिफरेंट कंट्रीज से. तो हम सब ई डॉक्टर्स ने मिल के एक साथ एजुकास्ट के थ्रू सबने जो है वो फिर कोविड के पेशेंट्स को देखा अपने अपने टाइम जोन में रहते हुए, पाकिस्तान के टाइम जोन को कंसिडर करते हुए. तकरीबन 1.5-2 साल का सिलसिला है मैं ई डॉक्टर से कनेक्टेड हूँ और जो भी प्रोग्राम्स आते रहते हैं और उसमें से मेजर ये कोविड का ही था. तो इस तरीके से हम पेशेंट्स जहाँ भी बैठे हैं वहां से हम पाकिस्तान में देख रहे होते हैं.
तो
टेलीमेडिसिन के थ्रू,
टेलीमेडिसिन. तो आप अब तक कितने मरीजों को देख चुकी हैं COVID-19 के दौरान खासतौर पर?
हाँ माशाल्लाह काफी, 6 महीने से तकरीबन ये प्रोग्राम चल रहा है. मार्च अप्रैल से सिलसिला शुरू हुआ था और अल्लाह माफ करे, आई मीन सॉरी टू से, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्योंकि राइज आ गया था तो हम जब भी हमारे पोर्टल में 35-40 पेशेंट्स तकरीबन होते थे जिनको आपको फिनिश करना होता था, 14 डेज उनका यूजुअली आइसोलेशन पीरियड होता था, और फिर दोबारा जब रिफ्रेश होता था पोर्टल में तो फिर 30-35 पेशेंट्स. तो मेरा ख्याल है अच्छे खासे पेशेंट्स अब तक हो चुके हैं, 100-200 पेशेंट्स तो, या शायद उससे ज्यादा.
तो लेकिन आप उस उन मरीजों को क्या मेडिसिन तो आप लोग दे नहीं सकते थे, तो फिर किस तरह उनको आपने इलाज किया या क्या उनको सहूलत पहुंचाई?
देखिए, कोविड ना एक वायरस का इन्फेक्शन है, और अगर थोड़ा भी कोई मेडिसिन की फील्ड से रिलेटेड होता है तो उसको ये अंदाजा होता है कि वायरल मेडिकेशन कोई एज सच होती नहीं है. एंटीवायरल मेडिसिन सिर्फ जब दी जाती है जब कोई बहुत बड़ा वायरल डिजीज हो, जैसे खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस होता है या कुछ और, तो हम उसमें बड़ी बड़ी जो है वो एंटी वायरल देते हैं. और जनाब, वायरल डिजीजेस में यूजुअली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि पैंडेमिक ने एंजाइटी और फियर ज्यादा क्रिएट किया हुआ था. और कुछ बेसिक दवाइयां ऐसी होती हैं सिम्टोमेटिक जो जैसे एक इंसान ओवर द काउंटर भी खरीद सकता है, जिसके लिए आपको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती. तो उस हद तक हमने पेशेंट को डील किया, मैनेज किया. और हम में से जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स थे, जैसे ई डॉक्टर्स का मेजर चंक ऑफ डॉक्टर्स उनका है, एक इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो डॉक्टर्स काफी टाइम से घर में थी, आउट ऑफ प्रैक्टिस थी, और जिनको अपना रिन्यू करनी थी एजुकेशन दोबारा फील्ड में आने के लिए. तो बेसिकली ये विजन थी डॉक्टर की, जिससे ई डॉक्टर का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था. तो वो डॉक्टर्स ने जो है जब ये कोर्सेज की, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज पूरी रिफ्रेश की, वो फील्ड में आई और फिर वो पेशेंट्स देख रही थी. तो वो जितना हद तक उनको कॉन्फिडेंस होता था वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो ओवर द काउंटर ड्रग्स की होती है वहां तक दे सकती हैं. जैसे आप भी जाएंगी, आप फार्मेसी से कोई दवाई खरीद सकती हैं, लेकिन अगर किसी को डॉक्टर का नहीं पता होगा तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि वो जाके काउंटर से कौन सी दवाई खरीदे. तो उस लेवल तक वो डॉक्टर्स बता सकती थी. और फिर हम जैसे डॉक्टर्स जो थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे थे साथ साथ अपनी प्रोफेशनल, हमारा भी स्कोप फैमिली मेडिसिन का बढ़ा ई डॉक्टर के प्रोजेक्ट और कोर्स के थ्रू. तो फिर हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप अहेड, क्योंकि हम प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे होते तो हम एक स्टेप अहेड उनको मैनेजमेंट में हेल्प कर दिया करते थे. दवाइयों में थोड़ा एक स्टेप अहेड रहते थे, एंटीबायोटिक्स की भी ट्रीटमेंट जहाँ जरूरत होती थी, रेड फ्लैग्स आपने पेशेंट को बता दिया, आपने मॉनिटर कर लिया कि पेशेंट के कब सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं तो हम पेशेंट को अब हॉस्पिटल भेज दें, या कब तक वो घर में स्टेबलाइज हो सकता है. क्योंकि हमने ई डॉक्टर्स के थ्रू बर्डन बहुत कम किया क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स का. हमने पेशेंट्स को होम आइसोलेशन में तकरीबन रोज, मतलब हमारे सीरियस पेशेंट्स को तकरीबन हमारा रोज डेली फॉलोअप होता था, और नॉन सीरियस पेशेंट्स को या जिनके सिम्टम्स कम होते थे उनको हम ऑल्टरनेट डे पे फॉलोअप करते थे. तो जिनको छोटी छोटी चीजों के लिए अगर नहीं फॉलोअप किया जाता तो दे वुड हैव गॉन टू द क्लिनिक, वो हॉस्पिटल जाते, और हॉस्पिटल ऑलरेडी इतने भरे हुए थे, क्लिनिक ऑलरेडी इतने भरे हुए थे, और वो एक अलग से एक थ्रेट भी था उनके लिए और बाकी मरीजों के लिए उनका एक्सपोजर घर से निकलना. तो इस ई डॉक्टर ने ओवरऑल हॉस्पिटल और क्लिनिक के बर्डन को भी कम रखा कि हमने उनको वही सहूलत उनके घर में प्रोवाइड की. तो पेशेंट हमारे फोन का वेट किया करते थे कि डॉक्टर साहबा मुझे ये अलामत आनी शुरू हुई, मैं आपके फोन का वेट कर रहा था कि आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं सब डर रहा हूं डॉक्टर के क्लिनिक में जाने से, घर से निकलने से, हॉस्पिटल जाने से.
बहुत बड़ी खिदमत है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ये खिदमत पहुंचाई और पहुंचाई जा रही है इस वक्त भी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध और एडुकास्ट का जो ये जॉइंट एक तरह से प्रोजेक्ट है, वेंचर है, जिस पर ये काम हुआ, ई डॉक्टर्स ने उसमें शमूलियत की. तो एक सवाल आखिर में जरूर करूंगी कि ये बताइए डॉक्टर अलीना अली साहिबा कि आप क्या देखती हैं कि अब आने वाले दौर में जो टेली मेडिसिन है या जो ई डॉक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आगे किस हद तक जाना चाहिए और किस हद तक ये जाएगा आपके नजदीक?
दुनिया इस वक्त एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही है और ज्यादातर चीजें जैसे पेपरलेस होती जा रही हैं, कॉन्टैक्टलेस होती जा रही हैं, आपको अपने घर के कंफर्ट में ही अब आप शॉपिंग भी कर लेते हैं, आप घर के कंफर्ट पर बहुत सारे काम कर लेते हैं. कोविड ने एक और नई दुनिया खोल दी है जहाँ पे अब लोग ऑफिस का काम भी अपना क्लिनिक से कर रहे, अपने घर से कर रहे होते हैं. तो डॉक्टर की कंसल्टेशन भी अब घर तक पहुंच गई है और कोविड ने उस चीज को और ज्यादा मार्जिन दिया है स्प्रेड आउट होने का, एक्सेप्टेबिलिटी का. तो अब टेलीमेडिसिन ही काफी हद तक फ्यूचर है कि अब लोग जो इमोबाइल हैं, जो फ्रेजाइल हैं, या फिर किसी और छोटी मोटी अलामत की वजह से जिनको हॉस्पिटल की नीडेड नहीं है, मतलब कोई वेंटिलेटरी सपोर्ट या कोई बड़ा मशीनरी सपोर्ट, तो वो अब बहुत आसानी से अपने घर में बैठ के अपनी कंसल्टेशन, डॉक्टर से पूरी बात, काउंसलिंग, मेडिसिन सब कुछ कर सकते हैं. और अब तो सिस्टम्स भी ऐसे डेवलप हो गए हैं कि डॉक्टर भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं अपनी ई प्रिस्क्रिप्शन को भी. मतलब अगर मैं टेलीमेडिसिन कर रही हूँ, लाइसेंस टेलीमेडिसिन कर रही हूँ, तो मैं ई प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे अपने पेशेंट को दवाइयां तक दे सकती हूँ विद माय लाइसेंस नंबर, तो पेशेंट बहुत कंफर्टेबली फॉलो कर सकता है. मतलब इसमें कंफर्ट इतना ज्यादा है और दुनिया की एडवांसमेंट इसी तरफ जा रही है, तो टेलीमेडिसिन हैज अ होल न्यू वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ इट.
और खासतौर पर पाकिस्तान के दूर अफ्तादा देहातों में और दुनिया भर में जो देहातों में जहां तक के मेडिकल की सहूलियात हासिल नहीं है और डॉक्टर्स भी कम हैं, उन सब का ये सोल्यूशन है ये टेलीमेडिसिन, आप समझती हैं?
बिल्कुल, अर्बन एरियाज के साथ साथ रूरल एरियाज के लिए तो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है, जहाँ पे जिनको एक्सेस नहीं है, खासतौर पर कंट्रीज जिस तरह की हमारा मुल्क है जिसपे अभी तक कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को एक्सेस नहीं है, वहां के लिए तो ये बहुत अच्छी सर्विस है. क्योंकि हमने अभी मरीज देखे हैं, तो हमारे मरीज एक गांव से लेके एक बड़े शहर का वीआईपी तक उसमें इंक्लूडेड होता था. मतलब कोई इनइक्वालिटी नहीं थी हमारे मरीजों में, एक ही सर्विस हम देते थे. तो इतनी खुशी होती थी कि अब वो सर्विस जो एक वीआईपी बंदे को मिल रही है, वही एक सर्विस एक गाँव के बिल्कुल देहात के बंदा, जिसको ये भी नहीं पता कि आइसोलेशन किसको कहते हैं, उसको जब पता चलता है, उसको कोई डॉक्टर फॉलो करता है और वो इतना ब्लेस्ड फील करता है, इतना ग्रेटिट्यूड दिखाता है, दुआएं देता है कि उसको घर बैठे कोई देख रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है.
और फिर आप जैसे डॉक्टर्स जो कि किसी वजह से आप जॉब नहीं करना चाहती या नहीं कर सकती, वो भी अपना अपने वक्त को बड़े प्रोडक्टिव अंदाज में इस्तेमाल कर सकती हैं और उन्हें ये भी नहीं एहसास होगा कि वो उन्होंने कुछ जाया किया पढ़कर.
बिल्कुल, ये डॉक्टर ने तो ऐसी हजारों डॉक्टर्स को माशाल्लाह से वापस ट्रैक पे लेकर आए हैं, जिनका एक ख्वाब था कि वो अपना इस मेडिसिन की फील्ड को ना छोड़ें, लेकिन अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी काफी जिम्मेदारियों की वजह से नहीं वो कैरी ऑन कर पा रही थी. उनको अपने घर पे भी टाइम के कंफर्ट के साथ अपने बच्चों की अपनी हर चीज देखते हुए वो सर्व कर रही हैं. मतलब इससे बेहतरीन ऑप्शन हो नहीं सकता था. और हमारे मुल्क को भी अब हम लोग पे बैक कर रहे हैं, मकसद हमने वहां से अपने मुल्क से जो चीजें गेन की हैं हमारे मुल्क ने ही सब कुछ दिया है. एंड दिस इज द बेस्ट वे टू पे बैक. अगर हम दुनिया में कहीं और भी हैं तो थ्रू टेली मेडिसिन. और जो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं वो भी अब पे बैक कर रही हैं अपने करियर को, जिस तरीके से हमें अपने पाकिस्तान ने तो दिया ये सब कुछ. ये एक डॉक्टर का रुतबा ही एक बहुत बड़ी चीज होती है, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे टीचर्स, हमारा मुल्क. तो हम वहाँ रहते हुए भी जो डॉक्टर्स अब वापस दे रही हैं, तो दे आर वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ हम प्रोडक्टिव हो गए हैं थ्रू ही डॉक्टर्स का प्रोग्राम, हम बहुत प्रोडक्टिव हो गए हैं.
और गवर्नमेंट ने आप लोगों पर जो खर्च किया था वो आप उसको अब वापस करने का आपको मौका मिला.
बिल्कुल बिल्कुल, हर एक को मौका नहीं मिलता. काफी लोग निकल जाते हैं बाहर, कभी वापस पलट के नहीं आते, या काफी लोग घर में बैठ जाते हैं पाकिस्तान में रहते हुए और कभी भी दुनिया की जिंदगी में दोबारा उनको चांस नहीं मिलता है अपनी फील्ड को रिज्यूम करने का. तो ये एक ऐसा एक विजन था जिसके थ्रू ये काफी सारे मसले हल हुए और सबको मौका मिला कि पे बैक भी कर सकें और दोबारा फील्ड में भी आ सकें और मरीज को भी फायदा हो सके.
और अगर एक और एंगल ये निकलता है कि वो डॉक्टर्स जो चाहें कि उसको एज प्रोफेशन अपना दोबारा से प्रैक्टिस करें और अपनी आमदनी में भी इजाफा करें, तो वो भी इसको एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आमदनी में इजाफे का.
बिल्कुल, ई डॉक्टर्स एजुकास्ट सिंध मिनिस्ट्री के साथ कॉन्स्टेंटली इन टच है और बहुत नए नए प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च करते रहते हैं इसी तरीके से डॉक्टर्स को इनकरेज करने के लिए कि वो इसको एज अ प्रोफेशन लें और वो अपने टेली क्लिनिक स्टार्ट करें डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स में बैठ के या अपने घर की कम्फर्ट में बैठ के. टाइमिंग्स के हिसाब से पोर्टल्स बन रहे हैं, मतलब इट्स ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस. हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इस तरह बहुत सारे लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज भी सॉल्व होंगे. डोमेस्टिकली रहते हुए घर में कंफर्ट में अपने फैमिली को भी इग्नोर ना करते हुए वो अर्न भी कर सकेंगी डॉक्टर्स. तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल. इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मरीज, फॉर डॉक्टर, फॉर कंट्री, फॉर गवर्नमेंट. अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ वेरी गुड वेंचर.
बेहद शुक्रिया डॉक्टर अलीना अली, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. आप एक डॉक्टर हैं और साथ साथ अब आप एक ई डॉक्टर भी हैं और आप ई डॉक्टर के तौर पर COVID-19 के दौरान हुकूमत सिंध और एडूकास्ट का जो प्रोजेक्ट है ई डॉक्टर्स का, उसमें आपने शमूलियत अख्तियार की और COVID-19 के दौरान मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जो खिदमात थी सर्विसेज वो पेश की. आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद.
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर. जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए. दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urduvoa.com पर. अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है. पाकिस्तान में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक उर्दू voa.com पर बराह रास्त सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए, दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
और अब हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं एक और ई डॉक्टर को, डॉक्टर सबीका शारजा से हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि आपने कब अपना जो मेडिकल का प्रोफेशन मुकम्मल किया था, कहाँ से किया था, कब छोड़ा और दोबारा ई डॉक्टर कब बनी, तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सबीका।
वालेकुम अस्सलाम।
तो जवाब दीजिए हमारे इन सवालों का।
लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज से मैंने 2003 में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने डाउ यूनिवर्सिटी से सिविल हॉस्पिटल से अपनी हाउस जॉब की और मैंने फिर SCPS पार्ट वन दिया और उसके बाद मैंने अपनी रेजिडेंसी आफान से की और जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी रेजिडेंसी 18 मंथ की और उसके बाद मेरी शादी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादी के बाद यूएई आई, लेकिन चूंकि मैं अपने घर के चीजों में अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई क्योंकि मेरे ट्विंस हुए, 2 times twins हुए और उसके बाद फिर मैंने एमआरसीओजी पार्ट वन यूके दिया इवन इन ट्विंस के साथ, वो मेरा क्लियर हुआ। फिर मैं सऊदीया भी मेरा जाना हुआ, वहां मैंने लाइसेंस दिया, वो भी क्लियर हुआ, लेकिन मैं बच्चों में इतना बिजी थी। लेकिन उसके बाद मैं हमेशा यही सोचती थी कि अल्लाह ताला मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखाए कि मैं अपने पैशन को कंप्लीट करूं। तो फिर मैंने ई फार्मा का कोर्स ज्वाइन किया जिसका भी रिसेंटली एग्जाम्स होने वाले हैं और मैंने अपना ई फैमिली मेडिसिन कंप्लीट किया। उसके बाद ये COVID-19 का एक पूरा प्रोजेक्ट आया जिसमें मैंने जो है वो बहुत दिल लगा के काम किया, पेशेंट्स रिलैक्स हुए, सेटिस्फाई हुए, तो मुझे बहुत खुशी हुई।
तो कितने लोगों को आपने ट्रीट किया या उनको सहूलियत पहुंचाई तिब्बी इस COVID-19 के दौरान?
जी, COVID-19 मैंने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट, मैंने जून की फर्स्ट वीक से किया और आई थिंक मेरे पास ऑलमोस्ट मैंने 1000 से अंदर तो मैंने पेशेंट्स देखे हैं और उसमें मोर्टेलिटी रेट ओल्ड एज की थी, लेकिन ये कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जो रिकवर हुए, उसमें 80% ऐसे पेशेंट्स थे जो कि बड़े कोऑपरेटिव पेशेंट्स थे और बहुत थैंकफुल थे अल्लाह के बाद के नहीं, हम एक पाकिस्तानी एक अपॉर्चुनिटी दी, वो हैरान भी हो रहे थे लिटरली, लेकिन उसके बाद बड़े खुश हो रहे थे कि हमें कोई गाइड करने वाला मिला, हमें कोई ऐसा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बताने वाला मिला। हमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनको हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी था और वो जा नहीं रहे थे, तो उनको मैंने सही वक्त पर उनको बताया कि नहीं, अब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपका ट्रीटमेंट अभी घर पे मुमकिन नहीं। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे, 1000 के करीब मैंने पेशेंट्स देखे और बहुत सेटिस्फेक्शन होती थी जब पेशेंट्स खुश होते थे, दुआएं देते थे।
तो अब जबकि आपको डॉक्टर सबीका, अब जबकि आपको ई डॉक्टर्स का एक तरह से आप क्वालिफाइड हो चुकी हैं एक ई डॉक्टर के तौर पर भी, वैसे भी आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन क्या अब आप शारजा में भी ये कोई प्रैक्टिस शुरू कर सकती हैं इस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर, ये जो आपका तजुर्बा है?
सर्टिफिकेट की बुनियाद पर डेफिनेटली शुरू कर सकते हैं, लेकिन शारजा मिनिस्ट्री के कुछ अपने रूल्स हैं, वो ये कहते हैं कि उनको जो है वो उनका लाइसेंस एग्जाम है वो देना जरूरी है।
ऑनलाइन या टेलीमेडिसिन के हिसाब से आप कुछ काम शुरू जरूर कर सकती हैं, इवन आप चाहे शारजा में हो या दुनिया में कहीं भी हो।
बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग पूरी 6 months की ई फैमिली मेडिसिन की हुई है और उसके बाद ई फार्मा की, तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें एडुकास का जो है डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से इन कोलैबोरेशन ये दोनों हुए हैं फैमिली मेडिसिन का और फार्मा का, तो उसमें हमें उन्होंने इस तरह ट्रेन किया, हमारे एग्जाम्स प्रॉपर लिए गए हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज में ट्रेन है कि हम वर्चुअल हम डॉक्टर टू पेशेंट, पेशेंट टू डॉक्टर इंटरेक्शन हो सके और हम ट्रीट कर सकें। बिल्कुल इस लेवल पे उन्होंने हमारी ट्रेनिंग की है।
और अगर आप प्राइवेट तौर पर कोई क्लिनिक खोलना चाहे तो?
प्राइवेटली मेरा तो पैशन डेफिनेटली है, मैं गायनी भूली नहीं हूँ, इस चीज को मैंने हमेशा मतलब मेरे अंदर रहा है ये जज्बा, तो मैं डेफिनेटली जब प्रायोरिटी ऑफकोर्स मैंने चेंज की, टाइमली मैंने जिस चीज को प्रायर समझा मैं उसकी तरफ गई, अब डेफिनेटली मैं जरूर परसू करूंगी, मुझे मौका मिला ऐसा तो मैं डेफिनेटली आई गो फॉर इट, क्योंकि definitely एक चीज होती है कि इंसान की इनर सेटिस्फेक्शन, मेरी इनर सेटिस्फेक्शन जो है वो उसमें है शुरू से।
बेहद शुक्रिया डॉक्टर सबीका, आपने शारजा से हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बेहद शुक्रिया।
थैंक यू।
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کی راؤنڈ ٹیبل کو سمیٹنے کا وقت ہوا. آج ہم نے بات کی پاکستان اور دنیا بھر میں موجود ان پاکستانی لیڈی ڈاکٹرز کی جو اپنی گھریلو مصروفیات یا شادی کے بعد دوسرے ملکوں میں شفٹ ہونے کے بعد اپنے میڈیکل پروفیشن سے منسلک نہ رہ سکی تھی, مگر جنہیں ایک عرصے کے بعد ایک موقع ملا آن لائن اپنے شعبے سے منسلک ہو کر اپنے پاکستانیوں کی خدمت کا, اور خاص طور پر کووڈ 19 کے دوران انہوں نے ہزاروں جو کووڈ 19 کے مریض تھے اور جو دوسرے مریض تھے ان کو فری کاؤنسلنگ اور فری